मेरी प्रशंसा में आप लोगों से बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर मुझमें कोई भी बुद्धि है तो यह अवसर है जब मुझे उसका उपयोग करना चाहिए। मित्रों, जो कुछ आपने देखा और मैंने देखा, उसके बाद अगर मैं कुछ भाषण करूं तो मेरे जैसा अरसिक और अहमक कोई नहीं। जो कुछ हमने यहां देखा उसमें से एक बात जो आपके सबके चित्त पर अंकित हुई होगी वो यह है कि इस सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमको ये समझाया गया कि यह भारतवर्ष एक है, हमारे पूर्वजों की विरासत है और आज हम कुछ ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि शायद अपने पूर्वजों की इस विरासत को बिखेर रहे हैं और आज मेरे जैसे लोगों के चित्त में ये शंका पैदा हो गई है कि ये भारतवर्ष क्या एक रहेगा, क्या इसको हम एक रखना चाहते हैं। महाराष्ट्र की सांस्कृतिक परंपरा और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में से जो दृश्य आपने आज देखे, उनमें जिन लड़कों ने और जिन लड़कियों ने काम किया उनमें से महाराष्ट्र के लड़के और लड़कियां बहुत कम थी। और मुझे तो यह भी बतलाया गया कि शिवाजी महाराज की भूमिका खेलने वाला लड़का मुस्लिम था। मेरे चित्त में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज हम एक विलक्षण स्थिति में से गुजर रहे हैं। हमारे सामने यह सवाल पेश है प्रत्यक्ष जीवन में कि ये देश किसका है। मेरे सामने बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। बहुत गंभीर बात नहीं कहूंगा, अपनी बात को थोड़े में समझाने की कोशिश करूंगा। एक गांव था, दो भाई उसमें रहते थे, नाम आप चाहे जो उनके रख लीजिए। एक बार शहर से बाहर हवाखोरी के लिए निकले, एक मैदान खाली पड़ा हुआ था। अब दोनों सैर करने निकले थे, कोई काम नहीं था तो क्या करते, कौन सी बात करते। तो बड़े भाई को एक शगल सूझा, उसने छोटे भाई से पूछा कि ये मैदान अगर तुझे मिल जाए तो तू क्या करेगा। छोटे भाई ने कहा इसमें मैं फुलवारी लगाऊंगा। तो बड़ा भाई कहने लगा बस तू तो शौकीन टट्टू है, तुझे हमें हमेशा गुलचरे उड़ाने की ही बात सूझती है, फुलवारी क्या लगाएगा। इस देश में हजारों लोग भूखे मर रहे हैं और तू फुलवारी की बात कर रहा है। छोटे भाई ने कहा कि खैर मेरी गलती हुई, हुजूर क्या करेंगे। तो मैं इसमें गेहूं का खेत इसको करूंगा, गेहूं बोऊंगा। तो बड़ा छोटा भाई कहने लगा कि मैं गुलचरे उड़ाना आला शौकीन टट्टू हूं, आप तो मनहूस हैं, निखट्टू हैं, सिवा पेट के किसी बात का विचार ही नहीं कर सकते। अब जरा दोनों में तैश आ गया, दोनों गुस्से में आ गए। बड़े भाई ने पूछा कि तेरे बाप ने भी कभी फुलवारी लगाई थी? अब बाप तो दोनों का एक ही था। तो छोटे भाई ने कहा कि मेरे बाप ने नहीं लगाई थी, तो क्या आपके दादा ने कभी गेहूं का खेत बोया था? वो कहने लगा मेरे दादा ने नहीं बोया, तो कहते तेरे परदादा ने कभी किया था। इस तरह से दोनों में वो पार्लियामेंट की भाषा शुरू हो गई, चकचक हुई। चकचक के बाद हाथापाई हो गई, एक इस तरफ गिरा दूसरा उस तरफ गिरा। एक सयाना आदमी रास्ते से जा रहा था, पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है? क्या कुछ नहीं, जमीन को लेकर लड़ाई हो गई। आप दोनों हैं कौन? सगे भाई हैं। क्या ठीक ही हुआ, सगे भाइयों में लड़ाई नहीं होगी जायदाद के लिए तो किसकी में होगी? ये तो इसमें कोई आपका अपराध नहीं है, लेकिन ये तो बताइए कि ये जमीन किसकी है? कहने की ये तो होश ही नहीं रहा, हम तो इस जमीन में क्या बोया जाए और क्या किया जाए इसकी कुछ पंचवार्षिक और दशवार्षिक योजनाएं बना रहे थे, लेकिन ये होश ही नहीं रहा कि ये जमीन किसकी है। मित्रों, आज इस देश के सामने ये सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल के जवाब की झांकी अगर इस कार्यक्रम में आपको दिखाई दी हो तो मैं समझूंगा कि यह सार्थक हुआ, ये सफल हुआ। ये जमीन किसकी है? भगवान की ये जमीन किसकी है? वो देखा आपने तेंदुलकर की के नाटक में से एक सीन, एक दृश्य देखा जिसमें राजा को खोज है पसीने की। वो जो पसीना बहाने वाला है उसको भगवान की जमीन पर कहीं जगह नहीं है, कहीं स्थान नहीं। जो पैसे वाला है वो खरीद सकता है, जो डंडे वाला है वो छीन सकता है, जिसके पास हुकूमत है वो जब्त कर सकता है, हड़प कर सकता है, लेकिन जिसके पास ये तीनों साधन नहीं है उसको कोई रास्ते पर भी चलने नहीं देता, रास्ते की पटरी पर सोने नहीं देता, पुलों के नीचे रहने नहीं देता और भीख मांगने भी नहीं देता। क्या भगवान की इस दुनिया पर उसका भी कोई अधिकार है? क्या इस जमीन का उत्तराधिकारी वो भी है कि नहीं है? मैं समझता हूं कि आज इस देश में इस प्रश्न को सबको पूछना चाहिए अपने आप से, और इसका जवाब भी खोजना चाहिए। इसे मैं आज की सबसे बड़ी जरूरत समझता हूं, और जितने भी प्रयोग, जितने भी नए नए प्रोजेक्ट इस संस्था में किए गए हैं उन सब के सामने यह लक्ष्य होना चाहिए। भगवान की जमीन का, इस देश का उत्तराधिकारी वो है जिसके पास न पैसा है, न हुकूमत है और न डंडा। उस साधारण मनुष्य की खोज हमको करनी चाहिए, और उसका रुतबा, उसकी वक़्त, उसकी इज्जत इस देश में कैसे कायम हो, इसका प्रयास हमारे सारे सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों में से होना चाहिए। यह आज इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है, और मैं इस आशा से यहां आया हूं कि शिक्षण की संस्थाओं में से ये स्फूर्ति और ये प्रेरणा पैदा होगी, जब मैं पढ़ता था छोटा था तो स्कूल में जाते वक्त मेरी माँ मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, थोड़ा सा कलेवा नाश्ता करके जा। और स्कूल की अकड़ में मैं कहता था वक्त हो गया है अब नहीं करूंगा। मेरे घर में बर्तन मांजने वाली जो स्त्री थी उसका लड़का भी मेरे साथ पढ़ता था। मैं स्कूल के रास्ते पर उसके घर होकर जाता था। एक दिन देखा अपनी माँ का अंचल पकड़कर रो रहा है। रात की बासी रोटी हो तो आधी मुझे दे दे, स्कूल जाने से पहले खाऊंगा, बड़ी भूख लगी है। कुर्ता शरीर पर है नहीं, रात में सुखाया था, बारिश के दिन होने के कारण वो सूखा नहीं था। ऐसी परिस्थिति में मैं पैदा हुआ और ऐसी परिस्थिति में मैं मरने वाला हूं। इस संस्था के लड़कों और लड़कियों, मैं आप लोगों को यह आशीर्वाद देने आया हूं कि आपको ऐसी दुनिया में न जीना पड़े। लेकिन ये आपके लिए कोई दूसरा नहीं बनाएगा, ये दुनिया आप ही को बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी एक किस्सा और सुनाऊंगा। दूसरे एक शहर में भी ऐसे ही दो भाई रहते थे। एक शादीशुदा था, बाल बच्चों वाला, दूसरा अविवाहित था, कुंवारा था, बड़ा भाई। बाप जब मरा तो दोनों को अपनी जायदाद बराबर बराबर बांट दी। अब दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। घर पर अपने अपने सोचते थे रात को। बड़ा भाई सोचता था कि ये छोटा भाई बाल बच्चों वाला है, अकेला है, कब खेत में काम करता होगा, कब बीवी बच्चों को संभालता होगा, कब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करता होगा, बेचारा मुसीबत में होगा। अच्छा ये हो कि एक बोरा गेहूं मैं इसके घर रोज रात में डालकर आया करूं। छोटा भाई सोचने लगा ये तन्हा रहता है, अकेला है, कब खेत पर जाता होगा, कब भोजन बनाता होगा, बेचारा बड़ी मुसीबत में होगा। अच्छा ये हो कि मैं एक बोरा रात में, अंधेरी रात में इसके घर पर लाकर डाल दिया करूं। दोनों इस तरह एक दूसरे को न दिखाई देते हुए बड़े चुपके से एक दूसरे के घर एक एक बोरा गेहूं डालकर आ जाते थे। दोनों सवेर हैरान कि एक बोरा गेहूं मैं भाई के घर डालकर आया था, बोरे बराबर हैं, कोई भूत वूत तो नहीं है, ये कैसे होता होगा। एक दिन इत्तेफाक से दोनों की रास्ते में मुठभेड़ हो गई। तब बड़ा भाई छोटे भाई से पूछने लगा कहां निकले थे। यूं ही सैर करने जा रहा था अंधेरी रात में 12 बजे और गेहूं का बोरा सिर पर लेकर सैर करने जा रहे थे, तुम भी अजीब आदमी मालूम होते हो। तो खैर मेरी जाने दीजिए, हुजूर कहां जा रहे थे। तो मैं भी सैर करने जा रहा था। तब दोनों की समझ में आ गया और दोनों ने कहा एक दूसरे से कि हम जो चुपके से करते आए हैं इसी से हमारी बरकत होने वाली है, इसी से हमारी उन्नति होने वाली है। मित्रों, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियों का नहीं, गुजरात गुजरातियों का नहीं, राजस्थान राजस्थानियों का नहीं, महाराष्ट्र भी अपना गुजरात भी अपना, राजस्थान भी अपना, ये भावना जिस दिन इन संस्थाओं के शिक्षण में से आप लोगों के हृदय में जड़ पकड़ेगी, उस दिन इस देश की शक्ल बदल जाएगी। आपने देखा तेंदुलकर के उस प्रहसन में कि पसीना बहाने वाला ही सबका विधाता है, सबका अभिभावक है, क्योंकि उसके हाथ में औजार हैं। जिसके हाथ में औजार हैं वही सबको बनाता है। तलवार बगैर औजार के नहीं बनती, एक तलवार दूसरी तलवार को नहीं बना सकती, तख्त बगैर औजार के नहीं बनता, कोई राजा अपना तख्त नहीं बना सकता, और औजार के बिना तिजोरी भी नहीं बन सकती। ये सरकार, साहूकार, सिपाही सब उसके बनाए हुए हैं जिसके हाथ में औजार हैं, और आज उसकी हालत सबसे खराब है, सबसे बदतर है। लोग उस पर रहम करते हैं, तरस खाते हैं, दया करते हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सारी ताकत की गंगोत्री ये औजार है। इस औजार की शान बढ़नी चाहिए, तलवार की नहीं, तिजोरी की नहीं, सख्त की नहीं, औजार की शान कायम होनी चाहिए। हमारी सारी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का और सारे शैक्षणिक प्रयोगों का मोह किस तरफ होना चाहिए? औजार की तरफ। औजार जिसके हाथ में है वो जीवन देता है, हथियार जिसके हाथ में है वो जीवन को हर लेता है, पैसे वाला खरीदता है, डंडे वाला छीनता है, सत्ता वाला हड़पता है, लेकिन औजार वाला सबको जिलाता है। उसकी शान बढ़नी चाहिए, इसके लिए संकल्प करना होगा। जितने छोटे बड़े लड़के यहाँ पर हैं, लड़कियाँ यहाँ पर हैं, उन सबको, मित्रों, तरुणाई हमारे यहाँ भगवान का गुण माना गया है। भगवान के बाद अगर किसी पर मेरा विश्वास है तो तरुणाई पर है। तरुणाई ही सब कुछ करेगी, वही हमारा आधार है और वही हमारी आशा है। कौन सा गुण चाहिए? एक छोटी सी कहानी से इसको भी आप लोगों के सामने रखूंगा और तब इस भाषण को मैं बंद करूंगा। दो लड़कियां समुद्र के किनारे रेत में खेल रही हैं, कौड़ियां बीन रही हैं, छीपें बीन रही हैं और खिलखिलाकर हंसती हैं। इतने में मल्लाह की लड़की, दोनों में से एक मल्लाह की थी और एक वकील साहब की थी, मल्लाह की लड़की कहने लगी, बहन मैं चली। वो पूछती है कहाँ जा रही है? वो देख उस किश्ती में बैठे हुए मेरे पिताजी मछलियां पकड़ रहे हैं, उनके साथ मैं जाऊंगी। तब वकील की लड़की पूछती है, तूफान उमड़ रहा है, पहाड़ जैसी लहरें उठ रही हैं, तुझे डर नहीं लगता? क्या डर काहे का? तो पूछने लगी, तेरी दादी कैसे मरी? इसी समुद्र में डूबकर। तेरी सौतेली बहन कैसे मरी? इसी समुद्र में डूबकर। परसों तेरे चाचा कैसे मरे? इसी समुद्र में डूबकर। तो फिर भी तुझे डर नहीं लगता? वो मल्लाह की बेटी कहने लगी, तूने तो सवाल पूछ लिया, मैं भी पूछूं? कि पूछ। तेरी माँ से कहाँ मरी? बिस्तर पर। तेरे दादा कहाँ मरे? बिस्तर पर। तेरी चाची कहां मरी? बिस्तर पर। और उस दिन तेरा भाई मरा, वो भी बिस्तर पर। तो बहन तू बता, दुनिया में बिस्तर पर ज्यादा लोग मरे या समुद्र में डूब कर मरे, एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई नापने पर मरे, लड़ाई के मैदान में मरे, या इन कामों में ज्यादा आदमी मरे या बिस्तर पर मरे? उसने कहा बिस्तर पर ज्यादा आदमी मरे। तो कहने लगे हमको तो स्कूल में सिखाया गया है कि जहाँ ज्यादा से ज्यादा आदमी मरे हो सबसे खतरनाक जगह। तो बहन सबसे खतरनाक जगह बिस्तर है। आराम और बिस्तर को जो सबसे खतरनाक जगह समझता है वो जवान है, चाहे 8 साल का हो चाहे 80 साल का हो, और जो बिस्तर को ही सबसे सुरक्षित जगह समझता है वो बूढ़ा हो, चाहे 5 साल का हो 50 साल का हो। मैं आज इस शुभ अवसर पर आपके और आगे आने वाले कार्यक्रम के बीच में नहीं आना चाहता, लेकिन ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश की तरुणाई को वो सद्बुद्धि दे, प्रेरणा दे, और उसके साथ साथ उस प्रेरणा के साथ साथ पराक्रम भी दे, वीरता दे, कि हमारे इस देश का तरुण और तरुणी सबसे भयानक और खतरनाक जगह बिस्तर को समझने लगे। यही भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है, इस देश की तरुणाई की चरणों में मेरी आकांक्षा है, मेरी आशा और अरमान है, और यही मेरा आशीर्वाद है। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।
परिवर्तन हुआ है वो पिछले 500 वर्षों के बराबर हुआ है। तो ये जो एक सडन ब्रेक हुआ इसमें हम एडजस्ट नहीं हो पाए, ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले शिक्षण जैसी चीज थी नहीं, सिवा ब्राह्मणों के और किसी किसी को शिक्षण मिले ही नहीं था। मुसलमानों के आने के बाद कुछ ये मुंशी हुए थोड़े कायस्थ वगैरह, लेकिन हर बच्चे को शिक्षण मिले ये पहले कभी था नहीं। इसलिए वो जो मूल्य थे शिक्षण के वो कभी सार्वत्रिक नहीं हो सके। और तीसरा कारण ये था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा माना गया शिक्षण, और इस देश में एक सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एक बात और है कि किसी गैर सरकारी एजेंसी पर लोगों का उतना विश्वास नहीं है जितना सरकार का। सरकार को भी कोसते हैं, कहते हैं अविश्वास है, लेकिन सबसे कम अविश्वास सरकार के लिए ही है। तो शिक्षण संस्थाओं में भी जो लोग काम करते हैं गैर सरकारी, वो अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसकी खोज में रहते हैं। और सरकार के जितने शिक्षक हैं आज, यूनिवर्सिटी तो एक इंडिपेंडेंट बना दी गई थी, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन वाइस चांसलर का होता है, और वाइस चांसलर के चुनाव में जितना करप्शन होता है उतना हमारे लिए नए ढंग से सोचने का समय आ गया। जैसे आप लोगों ने ये सोचा तौर करी थी, इनमें नयापन ने भी खोज लिया है और अपना लिया है, ऐसा अब इन सारे मामलों में सोचने में भी नए ढंग की जरूरत है। और सबसे पहली बात जो सोचनी है वो यह है कि मार्गदर्शन खोजना छोड़ दें। हमारे देश में मार्गदर्शन रास्ता दिखाने वाले इतने हैं कि चलने वाला कोई है ही, और हर रास्ते का अपना अपना एक तरीका है, एक लीक बन गई है। और क्रांति के लिए तो लीक से काम नहीं चलेगा, लीक छोड़नी होगी, नए रास्ते बनाने होंगे। तो मार्गदर्शन मत खोजिए, रास्ते खोजिए और रास्ते बनाइए। और ये रास्ते बनाने हैं बियाबान में। ये हिम्मत अगर न हो तो फिर लानत है तुम्हारी तरुणाई, इसकी जरूरत है। जितने पुराने रास्ते हैं वो पुरानी मुकामों पर ले जाने वाले, नया मुकाम अगर चाहिए तो नया रास्ता खोजना होगा। जीवन का ये अद्भुत आनंद भी है और सौंदर्य भी है कि इसमें बने बनाए रास्ते काम नहीं देते। हर समस्या नई होती है, मौलिक, और नए रास्ते खोजने होते हैं। यही रोमांस है जीवन का, और इसी में एडवेंचर भी है। पराक्रम के लिए इसमें मौका है। बने बनाए राजमार्गों पर चलने में कोई आनंद नहीं है असल। तो ये पहले अपने मन में सोच लीजिए, पक्का कीजिए कि जाना कहां, संकल्प क्या है मन में। ये हर नौजवान को अपने से पूछना चाहिए, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने से पूछे और खुद अपने को जवाब दे। वो इसी समाज में स्थान चाहता है कि इस समाज को बदलना चाहता है। विद्यार्थियों के आज जितने आंदोलन हो रहे हैं वो इस समाज में स्थान के लिए हो रहे हैं, इसको बदलने के लिए नहीं हो रहे। नौजवानों के भी जितने आंदोलन हो रहे हैं वो इसी समाज में स्थान के लिए हो रहे हैं, इसी समाज में इज्जत चाहिए, इसी में रुतबा चाहिए, इसी समाज में दौलत चाहिए। इसके लिए आंदोलन जो हो रहे हैं उनमें से अब हम कहीं पहुंचेंगे नहीं। इस समाज की जितनी शक्तियां थी उनकी हद आ गई है, अब इससे आगे ये समाज इस रूप में जाएगा नहीं। या तो अराजकता आएगी या फिर सैनिक शाही आएगी, फौजी शासन आएगा। एक हद आ जाती है, वो हद इसकी आ गई है आज के समाज की, तो इसे बदलना तो होगा।
कौन बदलेगा, कैसे बदलेगा। हमारे जीवन में दो आकर्षण रहे हैं। एक आकर्षण रहा है अमेरिका और दूसरा आकर्षण रहा है सैनिक शाही का। आज का नौजवान हो या पुराना नौजवान हो, सिपाही की शान हमेशा रही है। योद्धा, सिपाही, तलवार बहुत बड़ा आकर्षण रहा। यहां तक कि अध्यात्म में भी जो हमारे काम क्रोध वगैरह हैं, इनको शत्रु कहा गया और इनसे लड़ाई करो, जूझो, जोश के लिए हर चीज लड़ाई, भोजन के वक्त भी मुंह और हाथ की लड़ाई। तो विनोमान ने तो यहां तक कह दिया कि मां का स्तन और बच्चे का मुंह, उनकी भी लड़ाई कहो। इसलिए संघर्ष शब्द बहुत प्रिय है, वो वेदांत में प्रिय है, अध्यात्म में प्रिय है, साहित्य में प्रिय है, कविता में प्रिय है, सब जगह ये लड़ाई शब्द का बड़ा आकर्षण है। वेदों में भी बस लड़ाई है, अध्यात्म की लड़ाई करो। तो क्या इस शब्द में जो जादू है उसका कोई अर्थ होगा? अब सेना वाले इससे भाग रहे हैं लड़ाई से। किसी ने यह सुना है कि जो जगजीवन राम को किसी ने यह कहा है कि लड़ाई का मंत्री है, युद्ध मंत्री नाम नहीं है, प्रति डिफेंस मिनिस्टर, प्रतिरक्षण का मंत्री। तो युद्ध वाला तो यह कहने लगा है कि मैं रक्षण करना चाहता हूं, और शांति वाले कहने लगे कि हम लड़ाई करना चाहते हैं। तो क्या मोर्चा होगा, इसको सोचिए। आज की जो हालत है, और थोड़े में मैं सारी चीजें रखूंगा। इस देश के दो दोष परंपरागत रहे हैं, कब से रहे हैं मुझे पता नहीं। पहला दोष यह है कि इसने अपने जीवन की जिम्मेवारी कभी नहीं मानी। हमारे देश के मनुष्य ने अपने जीवन के लिए अपने को जिम्मेवार कभी नहीं माना। इसने कर्म को भी दैव बना दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा कर्म ऐसा है कि भाई तेरा है ना कर्म, तो तू कैसे विवश हो गया, तू क्यों मजबूर हो गया अगर कर्म तेरा है तो। लेकिन कर्म को भी इसने अपने ऊपर दैव बना दिया। तो अब मैं जो कुछ हूं, गरीब हूं, दुष्ट हूं, तो क्या करूं, मेरा कर्म ऐसा था। अब कर्म ही मुकद्दर बन गया, किस्मत बन गया। अब देखिए कैसा हमारा दिल काम करता है। हमारी संस्कृति बड़ी ऊंची है, यह है, वो है, ऐसा कहने वाले आपको बहुत मिलेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे लिए विश्लेषण कर रहा हूं, क्योंकि हमारे जो अवगुण है इसी में तो हमारी यह स्थिति हुई होगी ना। इतनी बुलंद अगर संस्कृति थी तो इतिहास में ये देश गुलाम क्यों रहा इतने दिन? इतने ऋषि मुनियों की संस्कृति, आज भी कितने मुनि हैं, कितने मठ हैं और कितने उनके शिष्य हैं, कितने लाख लोग कुंभ मेले में जाते हैं, लेकिन इन सबको स्वर्ग की चिंता है, यह लोग की चिंता नहीं है। धर्म हमेशा परलोकवादी होता है। धर्म में जीवन का विचार नहीं होता है, मृत्यु के बाद के जीवन का विचार होता है। मृत्यु के इस पार के जीवन का विचार धर्म में नहीं होता। तो बर्नार्ड शॉ ने मजे की बात कही एक दफा कि विज्ञान सफल नहीं हुआ और धर्म दुनिया में सफल हुआ। इसका कारण है कि धर्म लगातार एक ही एक झूठ को दोहराता रहता है और विज्ञान अपनी झूठ को बदलता है, इसलिए धर्म सफल हुआ और विज्ञान सफल नहीं हुआ दुनिया में। धर्म ऐसी बात कहता है जो वेरिफिकेशन हो ही नहीं सकता, पते की बात पता ही नहीं है। मरने के बाद क्या होता है, मैं कुछ कह दूं और आप कुछ चकमा दे दें तो अब इसका कौन झूठा है कौन सच है कुछ ठिकाना नहीं लग सकता, वेरिफिकेशन है ही नहीं। तो ये एक चीज है भाग्य निर्भरता, और ईश्वर के बाद का स्थान राजा का माना। यहां का राजा ईश्वर का प्रतिनिधि राजा, तो राजा कह लीजिए राज्य कह लीजिए, इसको नंबर दो जिम्मेवार माना। राज्य निर्भरता भाग्य निर्भरता। धर्म में अधिष्ठाता कौन है, यमराज, ईश्वर नहीं है। इसको फिर मैं दोहरा दूं, धर्म जो चल रहा है ईश्वर की बदौलत नहीं यमराज की बदौलत। यमराज का अगर डर न हो तो धर्म चलेगा, ईश्वर के प्रेम से नहीं, ईश्वर का भी डर, ईश्वर भी दंड ईश्वर के हाथ में हो, यमराज ईश्वर का रूप है, वही धर्म में राज्य करता है। और इधर सिपाही, और सिपाही का अंतिम रूप है जल्लाद, फांसी देने वाला। अब ये दो प्रेरणाएं रही हैं, एक भय की और दूसरी लोभ की। यमराज का भय, स्वर्ग का लालच, जेल का भय और राज्य का लालच, ये समाज के नियामक तत्व रहे हैं। इनको बदलने का नाम क्रांति है, इंसेंटिव, मनुष्य के एक्शन की प्रेरणा क्या हो, क्रांति का अंतिम सवाल है। कि अगर उसको मनी नहीं, काम के दाम नहीं, दुकान में मुनाफा नहीं, विद्या के बाद वित्त नहीं, विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रता धनमाप, पात्रता धनमापनोति, पात्रता के बाद धन मिलता है। तो विद्या के बाद अगर धन नहीं तो विद्या भी फजूल है। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा जीवन एक दुकान है। अब इस दुकान में सद्गुण भी है, चारित्र्य भी है, विद्या भी है, कला भी है, लेकिन है सब दुकान, पैसे के लिए है, इसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। इसका आज के अर्थशास्त्र को मैं समझा रहा हूं ऐसी भाषा में तो तुम लोगों की समझ में आ जाए, जो भाषा किसी की समझ में नहीं आती वो कॉलेज में पढ़ाई जाती है। और ये है, ये विद्वत्ता का ये लक्षण है कि मामूली से मामूली बात जो ऐसी भाषा में कहे कि जो किसी के समझ में न आए वो विद्वान कहलाता है, उसकी धाक जमती है। असल में वस्तु के बदले में कुछ मिले यही पूंजीवाद है, एक्सचेंज वैल्यू इसका नाम है तुम्हारी पुस्तकों में, प्रतिमूल्य का अर्थशास्त्र। जिसके बदले में कुछ नहीं मिलता वो संपत्ति नहीं है। ग्वाले का दूध संपत्ति है, बिकता है, मां का दूध संपत्ति नहीं, क्योंकि उसके बदले में कुछ नहीं मिलता। अब इस व्यवस्था को बदलना है, मैं एक एक वाक्य में बदला रहा हूं। राज्य निर्भरता का अब अंत आ रहा, क्यों आ रहा है कि अब कोई राज्य कुछ कर नहीं सकेगा। इंडिया को तो हटाना आवश्यक था क्योंकि वो मौलिक मूलभूत अधिकारों को का ही अंत करने वाली थी, लेकिन जनता पार्टी आई उसके बाद तो क्या किया, सिर्फ इंडिया ने जो बुराई की थी उसको हटाया, इससे आगे वो कुछ कर नहीं सकी और कर नहीं सकेगी। ये आपस की लड़ाइयां कोई नई चीज नहीं है ना, कांग्रेस तो 30 साल आपस में लड़ती रही है, तो जनता पार्टी सिर्फ क्या कर रही है, नकल कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जनता पार्टी इससे आगे कुछ कर नहीं सकेगी, इसका कारण है कि राज्य का जिस तरह की राज्य व्यवस्था है उसकी एक हद आ गई है। इसका एक सबूत आप लोगों को बतला दूं, ये पार्टियां हैं, अब हर पार्टी क्या कह रही है कि हमारे ईमान को बचाने के लिए कानून बने। इनका ईमान क्या है, एक पार्टी का आदमी दूसरे पार्टी में न जाए। क्यों जाता है, तो लालच है और दूसरा वो फुसलाते हैं। तो हम अब एक दूसरे को हम न फुसलाएं इसके लिए कानून बने, ये जो कहता है उसमें कहां ईमान रह गया। चोरों के गिरोह में जितना ईमान रहता है उतना भी नहीं रह गया। चार चोर मिलकर चोरी करें तो कम से कम आपस में तो ईमान रखते हैं। अब इस राजनीति की दुकानदारी यहां तक पहुंच गई कि आपसी ईमान के लिए कानून की जरूरत हुई। लेकिन अब यह हंसने की चीज है कि रोने की चीज है, इसका मतलब है कि अब राज्य निर्भरता काम नहीं आने वाली। मैं बहुत थोड़े में राजनीति वगैरह का वर्णन कर रहा हूं, इसको अच्छी तरह से समझ लो, तुम विद्यार्थी हो, मैं थोड़े में कह रहा हूं, इन चीजों को तुम सोचो अपने मन में, तो कह रहा हूं इसको। तो पहली चीज मैं आपसे ये कह रहा हूं तरुणों, कि अब राज्य निर्भरता के दिन लग गए हैं। और फिर भी राज्य निर्भरता क्यों है, राज्य निर्भरता इसलिए है कि हमारे देश में अब राज्य के सिवा और किसी पर किसी का विश्वास ही नहीं रह गया। यहां तक कि कॉलेज के प्रोफेसर और शिक्षक भी क्या मांग करते हैं कि हमारी तनख्वाह सरकार दे। ये संस्थाएं सब सरकार के हाथ में चली जाए, यानी सरकार नालायक है लेकिन गैर सरकारी संस्थाएं अधिक नालायक है। यह हमारी आज की मनस्थिति है। और लड़कों, अब मेरी पीढ़ी या मेरे बेटों की थोड़ी पीढ़ी का तुम भरोसा करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। हम चश्मा बेचने वाले हैं, आंखें छीन लेते हैं, इसको तुम जान रहे हो, अपने अच्छे चश्मे हम देते हैं, इसलिए चाहे सर्वोदय वाला है वो चाहे और कोई हो, तुम किसी का भरोसा मत। जिसने दूसरे का भरोसा किया वो मरा। हमारी मराठी में रामदास का एक वचन है, जो दुसऱ्यावरी विश्वासला त्याचा कार्यभाग बुडाला। दूसरे का भरोसा जिसने किया उसका कार्य डूब गया था। तो आज का तरुण अगर पुराने आदमियों की करेगा भरोसा करेगा तो कहां पहुंचेगा, भूतकाल में, और भूत ही बन जाएगा। बचपन में मुझे माँ सिखाती थी कि जिसके पैर और पीछे को होते हैं, जिसकी आंखें पीछे को होती है उसका नाम भूत। तो ये सब लोग पुरानी गाथाएं सुनाएंगे, राम ऐसा था, कृष्ण ऐसा था। ये महान उसकी बड़ी कृपा है कि बाप बेटा नहीं होता। बाप की नकल अगर बेटा होता तो न गांधी पैदा होता, न लोकमान्य पैदा होते। गांधी दीवान रह जाता और लोकमान्य स्कूल मास्टर रह जाते। और शिवाजी मुगलों का नौकर रह जाता। ये तो ईश्वर की कितनी कृपा है कि बाप के जैसा बेटा नहीं होता। तो अपना भरोसा करो, राज्य का नहीं, दैव का भी नहीं। अपने भरोसे आगे बढ़ो, चाहे तुम्हारी संख्या कितनी भी कम हो। संख्या के पीछे मत दौड़ो। आज संख्या में मनुष्य खो गया है। ये दूसरी चीज तुमसे कहना चाहता हूं। हमारे देश का जो लोकतंत्र है ये संख्या का है, मत का नहीं। लोकतंत्र का प्राण मत है, संख्या है। इसको भी समझ लो। संख्या कभी बदलती नहीं, मत का परिवर्तन होता है। और यही लोकतंत्र की आशा है। आज का अल्पमत कल बहुमत हो सकता है, आज का बहुमत कल अल्पमत बन सकता है। इसी के भरोसे लोकमत चलता है। लेकिन संख्या, हिंदू अधिक रहेंगे, मुसलमान कम रहेंगे, पारसी और भी कम रहेंगे, संख्या कभी बदलती नहीं है, मत बदलता है। और इसीलिए मत आधार है लोकतंत्र। लेकिन ये देश हमारा अभागा देश ऐसा है कि संख्या का बहुमत होते हुए भी, संख्या का लोकतंत्र होते हुए भी बहुसंख्या दबी हुई है। और ये परंपरा से दबी हुई है। मुट्ठी भर ब्राह्मणों ने सबको दबाया, उसके बाद मुट्ठी भर महाजनों ने दबाया। मुट्ठी भर आदमियों का वर्चस्व रहे, ये दुनिया का इतिहास तो है ही, हमारे देश का विशेष रूप से। आज भी इस देश में हर आदमी के एक एक मत है। और लोग ये कहते हैं कि इस देश में 80% गरीब आदमी है, फिर क्यों उनका राज नहीं हो रहा है? आदमी राजा भी हो और भिखारी हो, ये समझने की चीज नहीं है। अगर नागरिक सॉवरेन है, अंतिम सत्ता उसकी है, और गरीब नागरिकों की संख्या अधिक है, तो फिर ये क्यों नहीं सफल हो रहा है? इसके दो कारण हैं। एक तो गरीब को यह समझाया गया है हमारे देश में कि गरीबी भगवान की बनाई हुई है, जिसको उसने अपना कर्म कहा, दैव की बनाई गई, ये तेरी बनाई हुई नहीं। सारे धर्मों ने उसको यह सुना समझाया। इसलिए मार्क्स ने कहा कि यह धर्म अफीम की गोली है, बेचारा सच बोला, इसलिए गालिब खाता है। ये अफीम की गोली नहीं है तो क्या है? इसने इतना भ्रम मनुष्यों में पैदा किया हो कि गरीबी भगवान की बनाई हुई है, ये एक कारण इसका रहा। और दूसरा कारण हमारे देश में ये रहा कि गरीब बटा हुआ संप्रदाय में, जाति में, भाषा में और क्षेत्रों में, प्रांतों में बटा हुआ। महाराष्ट्र में बेळगाव का झगड़ा होगा एक दिन, बेळगाव कर्नाटक में रहे या इधर महाराष्ट्र में रहे, लड़ेंगे कौन? दोनों जगह के गरीब। इनमें से एक भी मैं नेता मरने वाला नहीं है, तुम लिख लो। हिंदू मुसलमानों के दंगे में न कभी सावरकर मरा न कभी जिन्ना मरा, मरे बिल्कुल दूसरे लोग। ये कैसा भ्रम है इसको समझने की आवश्यकता है। जो गरीब पूछने जाइए आप कहिए कि ये काम करना है तो कहेगा हमारे तो रोटी की फिक्र है दोपहर की, हमको क्या बुलाते। लेकिन गीता कुरान तो मराठी कानाड़ी का झगड़ा अगर हो तो वही जाकर करता है, अपने आप को भूल जाता है। इस तरह से गरीब इस देश का बटा हुआ है, और बांटा किसने है? धर्म ने, जिसके बारे में यह कहा गया था कि ये लोगों को जोड़ने के लिए है। मैं समझता हूं उसके नाम पर दुनिया ने मैं मनुष्य को जितनी संख्या में काटा है उतना और किसी के लिए नहीं, सिंह के लिए नहीं, जमीन के लिए नहीं, राज्य के लिए। ये सारा का सारा धर्म ने अनर्थ कराया है, धर्म संस्कृति भाषा। गरीब इस चीज को समझ नहीं रहा है, उसको समझाओ, उसके साथ उसके पास जाओ, उसको समझाओ कि शक्ति तेरे पास है, तुझे धोखा दिया गया है। ये दूसरा कारण है। तीसरा भी कारण इतना ही महत्व का है कि आज राजनीति में वर्चस्व राजनीतिक का, पॉलिटिशियन का है, सिटीजन का नहीं। अब ये पॉलिटिशियन कौन है इसको भी समझ। आज तक तीन बिचौलिया हमको मालूम, एक है पुरोहित। अब इसका क्या फंक्शन है, क्या काम है? भक्त को भगवान से न मिलने दे, बस इतना ही वो करता है, उसके बीच में रहता है भक्त के और भगवान के, नहीं तो उसका पेट नहीं चले। दूसरा बाजार में दलाल है, दुकानदार। ये चीज बनाता भी नहीं है और चीज बरतता भी नहीं, इसका फंक्शन इतना ही है कि बनाने वाले को और बरतने वाले को मिलने न दे। और इसी का नाम व्यापार है, ये कॉमर्स है आजकल, और दूसरा है क्या, दुकानदारी यही चीज है।